बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 23 मार्च दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। लोकसभा चुनावों का असली मुद्दा क्या हो, राष्ट्रवाद या बेरोजगारी और कृषि संकट, कौन से हैं वो मुद्दे जो इस चुनाव के शोर में कहीं खो गए हैं, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। सीरिया में अमेरिका के समर्थन से लड़ रहे कुर्द बलों ने कथित इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के अंतिम गढ़ को फतह करने का दावा किया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने बागूज कस्बे पर अपना पीला झंडा फहरा दिया है। दुनिया भर से आए जिहादी लड़ाकों का ये अंतिम गढ़ माना जा रहा था। SDF का कहना है कि 5 साल पहले घोषित खिलाफत को अंततः नष्ट कर दिया गया है। इस लड़ाई में अपनी वायु शक्ति से मदद करने वाले अमरीका ने ऐसा ही दावा शुक्रवार को किया था। अपनी ताकत के शिखर पर इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में सीरिया और इराक का ब्रिटेन जितना बड़ा इलाका था, जहां उसने 1 करोड़ से अधिक लोगों पर बंदूक की नोक पर अपना धार्मिक शासन चला रखा था। इस्लामिक स्टेट के हजारों लड़ाके अब भी फरार हैं। बागूस में जीत का ऐलान करते हुए SDF के प्रवक्ता अदनान आफरीन ने कहा,
اليوم بشكل رسمي قوات سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء جميع المعارك وتعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي.
आज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आधिकारिक तौर पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सभी लड़ाइयों को खत्म होने और जीत का ऐलान करती है। भौगोलिक रूप से अब उत्तर पूर्वी सीरिया में दाएश का नामो निशान नहीं बचा है। ये थे SDF के प्रवक्ता अदनान आफरीन के शब्द। नाइजीरिया में मुख्य विपक्षी PDP पार्टी ने सत्ताधारी APC पार्टी पर कानो प्रांत में हिंसा और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। 6 प्रांतों में गवर्नर चुने जा रहे हैं। यहां हिंसा की वजह से 2 सप्ताह पहले चुनाव रद्द कर दिए गए थे, लेकिन कानो प्रांत के अधिकतर हिस्सों में मतदान नहीं हो सका है। यहां बंदूकधारी समूहों के चुनावों में खलल डालने की खबरें मिल रही हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग से यहां एक बार फिर मतदान रद्द करने की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका में 1 सप्ताह पहले आए चक्रवाती तूफान इडाई की वजह से मोजाम्बिक में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बाढ़ का पानी हट जाने के बाद ही मरने वालों की सही संख्या का पता चल सकेगा। तूफान इडाई की वजह से पड़ोसी मलावी और जिम्बाब्वे में भी बड़े इलाके में बाढ़ आई है। हजारों लोग अब भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। मोजाम्बिक में सरकारी राहत केंद्रों को राहत सामग्री मिलनी अब शुरू हुई है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का विरोध करने वाले लंदन में एक बड़ा मार्च निकालकर इस मुद्दे पर दूसरा जनमत संग्रह कराने की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन का कहना है कि वो इस मार्च में शामिल होंगी। करीब 40 लाख लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करके ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का विरोध किया है। पीपल्स वोट के निदेशक जेम्स मैकगोरी का कहना है कि वो चाहते हैं कि ब्रेक्सिट को लेकर होने वाले समझौते पर सीधे जनता मतदान करे। उन्होंने कहा,
The Brexit process is a complete mess. The government themselves are saying we're in a national crisis, and you've seen people from
ब्रेक्सिट प्रक्रिया पूरी तरह से गड़बड़ है। सरकार स्वयं कह रही है कि हम राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आज यहाँ देश के कोने कोने से लोग आए हैं और बता रहे हैं कि वो कितने नाखुश हैं। उनकी मांग बहुत ही सरल है, चाहे वो सरकार का ब्रेक्सिट समझौता हो चाहे कोई और समझौता हो, उस पर वेस्टमिंस्टर के राजनेताओं की बजाय सीधे जनता मतदान करे। ये थे पीपल्स वोट के निदेशक जेम्स मैकगोरी का। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इससे पहले शुक्रवार को ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सांसदों को बताया था कि वो यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते पर संसद में तीसरा मतदान नहीं करवाएंगी। इससे पहले सांसद प्रधानमंत्री के समझौते को 2 बार खारिज कर चुके हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि यदि सांसद समझौते को पारित कर देते हैं तो वो ब्रेक्सिट की तिथि बढ़ाकर 22 कर देंगे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 धमाके हुए हैं, जिनके बाद गोलीबारी होने की खबरें सामने आई हैं। कथित जिहादी संगठन अलशबाब का कहना है कि शेंगनी इलाके में हुए ये हमले उसने किए हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811 7000 और 1800-102-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। राधिका जी स्वागत है आपका, और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। आज हमें श्रोताओं से जोड़ने की जिम्मेदारी है राजेश चौहान, स्टूडियो मैनेजर, जो इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस विशाल देश में चुनावी फिजा में न जाने कितने मुद्दे तैर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दे की झलक हम आपको सुनवाते हैं।
I don't know enough about the attacks. Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi.
मुझे हमलों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हमले होते रहते हैं। मुंबई में ताज और ओबराय होटल पर भी हमले हुए थे। हम तब भी इसी तरह कार्रवाई करके अपने जहाज़ों को भेज सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों को डील करने का ये सही तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई वहाँ से यहाँ आया, उसने हमला किया, उस देश के हर नागरिक को हम जिम्मेदार ठहराएं, ये सही तरीका नहीं है।
ये थे कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो कार्रवाई की उसका जिक्र कर रहे थे। सैम पित्रोदा के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। आलोचना की इस कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज क्या कहा, वो सुन।
वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बड़ा है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, वो भी सुनिए।
प्रधानमंत्री मोदी सेना और एयरफोर्स आर्म फोर्सेस के शौर्य के पीछे छुपकर किसी व्यक्ति विशेष का एक इल्जाम, जो उसका खुद का ओपिनियन है, हमारे दल से उसका कुछ लेना देना नहीं, उसको पकड़कर राजनीति कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार की इन परतों पर उनको कोई जवाब ना देना पड़े।
इस तरह के तमाम बयान हमारे श्रोताओं ने देखे, सुने और पढ़े होंगे। ये एकदम ताज़ा हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस तरह के और बयान आपको आसानी से मिल जाएंगे। बीबीसी इंडिया बोल में आज हम अपने श्रोताओं से सुनना चाहेंगे कि लोकसभा चुनावों का असली मुद्दा क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद या बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे तमाम मुद्दे। श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन आपसे जानना चाहेंगे, वो ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे लगते हैं आपको जिन पर बात होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत ना के बराबर हो रही है?
देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सैम पित्रोदा है वो कांग्रेस उनसे अलग अपने आप को नहीं कर सकती है। वो राहुल गांधी के विशेष सलाहकार हैं, गांधी परिवार के बहुत ही करीब हैं, राजीव गांधी के ज़माने से। तो ये सुरजेवाला जी, उनके प्रवक्ता ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो व्यक्ति जो कांग्रेस से के साथ कोई संबंध नहीं है, उनकी टिप्पणी पर बीजेपी इतना वो जोरों शोरों से बोल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। सैम पित्रोदा एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं कांग्रेस के लिए। और आपने जो कहा कि फिज़ा, मेरे को लगता है कि जो तीन जो प्रदेश के चुनाव थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। कृषि के मुद्दे, बेरोज़गारी, GST, नोटबंदी के जो असर हुए हैं छोटे छोटे व्यापारियों पे, छोटे उद्योग पे, वो सब छाए रहे। जो मेन डिस्कोर्स नैरेटिव जिसको कहते हैं हम, पुलवामा ने अचानक पूरा फिज़ा को बदल दिया है, पूरा नैरेटिव को ही बदल दिया है। और एकदम एक चरण सीमा तक पहुंच गई थी ये राष्ट्रवाद, और अब तो आपको तो मालूम है कि जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा है वहां बीजेपी माहिर है उससे उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की, और पहले दिन से ही उठा रही थी। और अब उस समय विपक्षी दल कुछ बोले नहीं, एकदम चुप रहे। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, उन्हें तुरंत दबाया गया। एक ऐसा माहौल था कि इस पे कोई किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो बालाकोट हुआ, अभिनंदन वाली घटना हुई, वो वापस आ गए, उसके बाद थोड़ा फिर ठंडा होने लगा माहौल, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, बेरोज़गारी, कृषि क्षेत्र के मामले, उन सब की फिर से चर्चा में आ गई। लेकिन इस बार मैं कांग्रेस और विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी। एक तो रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कुछ अनाप शनाप सा बयान दे दिया है, और फिर आपको ये सैम पित्रोडा जो मणिशंकर अय्यर का चाय वाला जैसे बयान है, वो बिल्कुल इसी टाइप का बयान दिया है।
राधिका जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, और चर्चा के बहुत सारे पहलू हैं, हम अलग अलग पहलुओं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी, आज हमारे पहले श्रोता कौन है?
जी हेलो।
जी, अपना नाम बताएं।
जी, मैं एलपी गौतम, देवसर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ।
जी
जी, बीबीसी इंडिया वॉल में जहाँ तक प्रश्न है आज के कार्यक्रम का, कि रोज राष्ट्रवाद प्रमुख होना चाहिए कि रोजगार प्रमुख होना चाहिए कि कृषि होना चाहिए, तो मेरा इसमें कथन ये है कि यदि राष्ट्र रहेगा तभी तो सब कुछ होगा। एक संस्कृत की पंक्ति है कि राष्ट्रस्यार्थे नैयद ज्ञानम, राष्ट्रस्यार्थे धनम, राष्ट्रस्यार्थे बलम यन्ना धृतस्य ज्ञानम धनम बलम। क्योंकि यदि देश है तभी तो सब कुछ है। उसके बाद चुनाव में रोजगार की भी महत्व होना चाहिए, और किसानों की भी भूमिका होनी चाहिए। किसानों के लिए भी कोई ना कोई ठोस उपाय किए जाने चाहिए
जी,
जो सरकारें बने। तो
एलपी गौतम हमारे श्रोता सिंगरौली मध्य प्रदेश से जो ये बात कह रहे थे, उससे मिलती जुलती बात बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर योगेश पांडे लिख रहे हैं कि राष्ट्र जो है वो व्यक्तियों से बनता है, इसलिए व्यक्तियों की समस्या राष्ट्र की समस्या होती है, यही चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, कोई बनाए हुए मुद्दे नहीं। राधिका जी, योगेश पांडे की इस टिप्पणी से मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये कौन तय करता है?
ये एक तो जनता को तय करना चाहिए, जो वोटर्स हैं आइडियली आइडियल सिचुएशन में उनको तय करना
क्या
चाहिए।
क्या जनता तय कर पाती है
चुनाव
के मुद्दे?
नहीं नहीं, जो पार्टी जिसका स्वर जिसके वाणी में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ताकत है, क्षमता है, वो ही डिसाइड करती है। और हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से लगातार भाजपा डिसाइड कर रही है कि मुद्दे क्या होंगे, भाजपा का अपर हैंड है। हमें लगा कि इस बार भाजपा थोड़ी डिफेंसिव हो जाएगी, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने राज किया है और कमियां तो हैं ही हैं, इन्होंने जिस ढंग से सरकार चलाया है और गवर्नमेंट डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें बेरोजगारी वगैरह का जिक्र किया जा रहा है, तो हमें लगा कि विपक्ष थोड़ा हावी होगी इस बार और विपक्ष चुनावी मुद्दे अच्छी तरह पेश कर पाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा है।
आपने विपक्ष की भूमिका का जिक्र किया है। आकाश नाइक लिखते हैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर कि बेरोजगारी और कृषि संकट पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए राष्ट्रवाद का नाटक किया जाता है, ये शब्द हैं आकाश नाइक के। राधिका जी, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी और खेती किसानी के जो मुद्दे हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है जानबूझकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी ये लगने लगा है कि इन मुद्दों में मेहनत ज़्यादा है, मुनाफा कम है?
जी, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि विपक्ष को भी लग रहा है कि हमें इस ऐसे मुद्दे पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लेकिन विपक्ष भूल जाती है कि यही मुद्दे थे जो कांग्रेस को पावर के करीब लाई है मध्य प्रदेश में, पावर में ला चुकी है राजस्थान में, और अच्छी भारी जीत दिलवाई है छत्तीसगढ़ में। अगर मानिए एक मिनट के लिए, अगर कांग्रेस कृषि के मुद्दे ना लेती, जीएसटी ना लेती, नोटबंदी ना लेती, बेरोजगारी ना लेती, युवाओं की समस्या ना लेती, तो वो किसी तरह बीजेपी को टॉपल नहीं कर पाती इन तीनों प्रदेश में।
ये विधानसभा चुनाव तो हो गए, अब लोकसभा की बारी, क्या वही मुद्दे इन लोकसभा चुनावों में उतनी मुखरता से, उतनी प्रमुखता से गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? इस पर हम आएंगे, उससे पहले अगले श्रोता के पास चलते हैं। जी
हेलो,
कौन है हमारे साथ इस समय?
जी
जी सर नमस्कार।
जी नमस्ते
सर। जी हमारा नाम हाफिज कुतुबुद्दीन है, हम नेत्रहीन है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर।
जी हाफिज साहब बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको कि इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और कौन से मुद्दे हैं जो जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है?
जी सर जी हम तो यही समझते हैं और यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है विकास और तरक्की और देश के एकता इत्तेहाद के मुद्दे पे लड़ा जाए और नफरत और की जगह मोहब्बत के वो किया जाए। और राष्ट्रवाद का जहाँ तक सर ताल्लुक है तो हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद बीजेपी सरकार जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, कांग्रेस भी राष्ट्रवादी उससे ज्यादा, उनके दो नेता कुर्बानी दे चुके हैं देश के लिए, उसे कोई नकार नहीं सकता, देश भुला नहीं सकता सर। तो हम ये चाहते हैं कि अब की इलेक्शन इत्तेहाद यानी कि मुल्क में एकता बनी रहे, नफरत की जगह मोहब्बत रहे, आपस में लोग मिलजुल के विकास तरक्की का मामला तय हो।
राधिका जी, ये हमारे श्रोता हाफिज सुल्तानपुर से जैसा कह रहे थे, राष्ट्रवाद में बुराई क्या है? मतलब क्यों कांग्रेस उसी तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खुलकर सामने आकर वैसे ही जोर शोर से मुद्दा उठाकर अपना चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर पाती या उस मुद्दे पे नहीं खेल पाती जैसे कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी करती है, कांग्रेस के साथ इस मुद्दे में क्या दिक्कत हो जाती है?
जी कांग्रेस ने मुझे लगता है इतिहास से भी कुछ सबक सीखा है। जैसे हाफिज साहब ने कहा उनके दो प्रमुख नेता तो कुर्बान हो गए हैं, कोई इसको कोई नहीं नकार सकता, ये फैक्ट है। लेकिन आपको अगर याद है कि कारगिल के समय कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए उस समय वाजपेयी जी के सरकार के ऊपर और जो घटनाक्रम थी कारगिल के उस पे, और उसके लिए कांग्रेस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो 99 के चुनाव में जो हुआ था कांग्रेस को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए। शायद ये देखिए, ये जो राष्ट्रवाद जो मुद्दा है इसमें कोई बुराई नहीं है, उठाना भी चाहिए, हम राष्ट्रवादी हैं, आप भी राष्ट्रवादी हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इसको पेश करने का भी एक तरीका होता है। तो कांग्रेस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिसल जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि इसे कितनी ऊपर ले जाएं और कैसे कैलिब्रेट करें, इसमें कैलिब्रेशन की बहुत ज़रूरत है। तो पहले 2-3 हफ्ते तो पुलवामा के बाद हमें लगा कि कांग्रेस और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रही है, कुछ नहीं बोली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुपचाप गए और कुछ सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो गए थे उनके परिवार से मिले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद फिर राहुल जी राफेल वाले मुद्दे पे आ गए हैं और
मुझे लगता है राधिका जी मुझे आपको थोड़ा टोकना चाहिए इस बारे में। हमारी बातचीत में चर्चा में हम बीजेपी और कांग्रेस में ही इर्द गिर्द चल रही है चर्चा, बीजेपी और कांग्रेस से इतर हम बाकी दलों की बात करें तो ये जो बाकी दल हैं क्या ये दल भी इस बाकी इन तमाम जमीन से जुड़े मुद्दों को उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, इनके साथ क्या दिक्कत हो रही है?
देखिए हाँ, मैं ममता बनर्जी की उदाहरण देना चाहती हूँ, वो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है और अच्छी तरह ये जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक मुद्दे किसान के मुद्दे अच्छी तरह उठा पाती है, अग्रेसिवली उठा पाती है, लेकिन वो भी फिर घूम फिर के इसी पे आ गई, कहने लगे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर उनका जो डिस्कोर्स था वो पूरी तरह इससे डोमिनेट हो गया, क्या बोलते हैं, पुलवामा से। तो ये जो कह रहे आपकी बात है, कांग्रेस के अलावा बाकी जो क्षेत्र दल हैं जो काफ़ी मजबूत हैं अपने अपने इलाके में, आप चाहे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी या आरजेडी को लीजिए या डीएमके, तो खैर ये पुलवामा उठा नहीं रही है क्योंकि साउथ में ये ज़्यादा गूंजता नहीं है, लेकिन ये जो उत्तर भारत के जो पार्टीज़ हैं उन्हें उठाना चाहिए ज़मीन से। जैसे उत्तर प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं किसान से जुड़े हुए।
मैं आपने साउथ का जिक्र किया, ये दक्षिण भारत के बारे में लगे हाथ बात होनी चाहिए कि ये इस तरह के मुद्दे जो आपने पुलवामा का जिक्र किया ये दक्षिण भारत की राजनीति में क्यों इतना इन पे उबाल नहीं आता, इतना महत्व क्यों नहीं पा पाता ये मुद्दा, और बाकी मुद्दे जैसा आप कह रही वो वहाँ ज़्यादा मुखर हो जाते हैं।
जी जबकि जो जवान्स हैं उसमें देखे आप अगर देखे जाएं तो दक्षिण भारत की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होगी या शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है उत्तर भारत से, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा छाई नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पर लोग अपने अपने प्रदेश के बारे में ही प्रदेश को महत्व देते हैं, जो फेडरलिज्म है वो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक प्रदेश में। तो जैसे आप तमिलनाडु लीजिए तो वहाँ पे कावेरी वाला मुद्दा छाया रहेगा या अन्य दूसरा कोई मुद्दा जो प्रांत से रिलेटेड है वो छाया रहेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका मतलब नहीं है कि वो कोई कम राष्ट्रवाद है या ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश जो रहता है वो राष्ट्र के ऊपर हो जाता है दक्षिण भारत में, फेडरलिज्म की है महत्व।
आपके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम राधिका जी कार्यक्रम में कुछ और श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं। इस समय कौन हमारे साथ हैं?
सर मैं अंकित माथनकर हूँ।
जी अंकित जी बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर मैं अंकित माथनकर भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
जी अंकित जी बताइए क्या सोचते हैं आप, आपके राज्य में भी अब लोकसभा के चुनाव हो ही रहे हैं पहले और शायद दो तीन चरणों में होंगे आपके यहाँ भी, क्या क्या लगता है आपको कि कौन से असल मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और कौन से मुद्दे जिनकी अनदेखी हो रही है?
सर मौजूदा दौर में अगर मैं देखूँ तो जो मुद्दा सबसे, मैं एक छात्र एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा मुद्दा है शिक्षा। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो राजनीति सभी जगह होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन शिक्षा जो हमारा जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं होती है। जो सरकारी महाविद्यालय है उनकी हालत एक कंडम जो बस होती है उसकी तरह हो गई है, जहाँ पे टीचर से लेकिन माहौल सर ऐसा है कि बच्चे सब आ रहे एग्जाम देते चले जाते रिजल्ट आता है, बच्चे क्लासेस नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण है, वही बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, फिर ये सब चीज, चाहे स्कूलों की बात हो चाहे हमारे कॉलेज की बात हो। तो शिक्षा जो एक मेन मुद्दा है जो मैं समझता हूँ जो हमें डेवलप कर सकता है सोशली इकोनॉमिकली, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से, उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है जितना जरूरत है। कॉलेजेस में सब लाइब्रेरी की इतनी जरूरत है जो नहीं है, सिर्फ एकेडमिक्स की कुछ बुक्स के अलावा लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे एमपी में कॉलेजेस की बात की जाए या स्कूलों की बात मैं मेन करना चाहूंगा, क्योंकि स्कूलों में भी लाइब्रेरीज नहीं है, हम ज्ञान कहाँ से ले सकते, टीचर से ले सकते, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था तो होनी चाहिए जो मैं असल मुद्दा मानता हूँ।
अंकित जी इस बदहाली के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
सर मैं इस बदहाली के लिए जो भी राजनीतिक पार्टी है मैं सभी को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि कोई एक राजनीतिक पार्टी आके नहीं गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 14 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, मैं मानता हूँ बहुत सारे उनने चेंजेस किए स्कूलों में बिल्डिंग्स में, लेकिन वो व्यवस्था अभी भी नहीं आई है कि बच्चा स्कूल जाए, सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता है, सब प्राइवेट में जाना चाहता, जबकि सरकारी में पैसा खर्च हो रहा है इतना गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो व्यवस्था आज भी नहीं है। अगर हम सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया अंकित जी, बहुत शुक्रिया आपकी बात हम तक पहुंची, तमाम श्रोताओं ने सुनी। राधिका जी आपको लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि शिक्षा के मुद्दे पे कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता या इतने जोर शोर से इस पे बात नहीं होती, बहस नहीं होती? मुझे तो सुनाई नहीं देती बहस।
आप इन्होंने ये मुद्दा उठाया, बहुत मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि देश में दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली जो आप जिस जहाँ आपकी सरकार है, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, और जो इन्होंने जो आपके श्रोता ने जो सरकारी स्कूल की बात की है, तो अब लाख और डिफेक्ट्स हो सकते हैं आप सरकार में, लेकिन जिस ढंग से सरकारी स्कूलों की का वो मरम्मत किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, वाकई वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानती हूँ। लेकिन अगर संदीप सोनी जी अगर आप कहेंगे कि ये मुद्दा बन जाएगा लोकसभा चुनाव में, तो नहीं बनेगा, इसलिए लोग यही कहेंगे कि ये प्रदेश से रिलेटेड है, जब विधानसभा चुनाव आएगा दिल्ली का तब मुद्दा बन सकता है, जबकि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और प्राथमिकता देना चाहिए सभी राजनीतिक दलों
के स्तर से छोड़ के यदि मतदाता के स्तर पर जाके सोचें तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या मतदाता कभी इस मुद्दे को सोचकर वोटिंग करता है या नहीं करता है।
देखिए आपकी श्रोताओं ने तो बहुत डिटेल में बात किया है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं घूम रहा है शिक्षा वाली बात।
अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, समय हमारे पास कम है। जी कौन है हमारे साथ इस समय?
हेलो
जी,
हाँ मैं कारुंडा छोटी साड़ी प्रतापगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। नेत्रीन
जी, जी 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 बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
मैं पुराना श्रोता हूँ आपका, काफी कम से कम 50-60 साल पुराना।
जी जी बिल्कुल हमें याद है, आप चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, लेकिन आजकल चिट्ठियाँ कम लिख रहे हैं आप।
मैं चिट्ठी लिखने वाला नहीं सर, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, बिना पढ़ा लिखा हूँ।
अच्छा अच्छा, प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, राजस्थान से बोल रहे हैं आप?
जी जी हाँ।
जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए बताइए।
ग्रामीण क्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं, छोटी सादड़ी तहसील से।
जी छोटी सादड़ी, और एक बड़ी सादड़ी नाम की जगह भी है वहाँ पर।
जी ये पास ही।
ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए? आपके अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं।
चुनाव इन मुद्दों में जो अभी मध्य प्रदेश का श्रोता बता रहा था, तो वो मतलब बिल्कुल बात सही बता रहे थे कि प्राइवेट वाले को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और सरकार की स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और तरजीह ज्यादा इनको प्राइवेट वाले को दी जा रही है, ताकि लास्ट में तो वापस सरकारी में आना पड़ता प्राइवेट वाले को, पब्लिक को पैसे की मार खानी पड़ रही है, इसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो इस पर मतलब ध्यान देना चाहिए सरकारी शिक्षा पर
जी,
तो ताकि गरीब आदमी भी पढ़ सके।
जी जी जी, प्रतापगढ़ वाले श्रोता शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक दो श्रोताओं ने इस मुद्दे को उठाया, अगले श्रोता के पास चलते हैं। कौन है हमारे साथ इस समय?
मैं दसीडी झारखंड से सुधीर कुमार पाठक बात कर रहा हूं।
जी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपके अपने झारखंड राज्य में कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे हैं और कौन से गायब हो गए हैं चुनाव से? बिल्कुल
चुनाव में केवल एक ही मुद्दा मेरे आसपास दिखाई दे रहा है, वो एक खोखला और बिल्कुल ढोंग फैलाया हुआ है, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा।
ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों खोखला कहते हैं आप इसे?
और क्या कहें इसे, ये बात देखिए, आप ये आप हैं बीबीसी वाले हैं जो इतने संवेदनशील विषय को उठाते हैं, रोजी रोटी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का मुद्दा, यहाँ तक कि पेयजल आपूर्ति का मुद्दा।
जैसे
गर्मियां पड़ रही है हमारे क्षेत्र में, जल का इतना अभाव है कि मत पूछिए, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन मुद्दों को गौण करके केवल एक खोखला राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, केवल लगता है कि ये ही राष्ट्रवाद के ठेकेदार और कोई दूसरा है ही नहीं।
देखिए जसीडीह वाले श्रोता ने हमारे एक पानी का बड़ा असल मुद्दा उठा दिया, भारत के बड़े हिस्से में पानी की समस्या है, लेकिन मुझे याद नहीं आता, शायद आपको याद आ जाए, कभी किसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पानी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की हों।
जी जी, चुनावी घोषणा पत्र में एक या दो वाक्य में ही पानी या सिंचाई के बारे में तो खैर थोड़ा और डिटेल में आता है, लेकिन पानी का तो बिल्कुल आप कहते हैं एकदम नीचे है प्रायोरिटी में। और मैं ये श्रोता को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने ये पेयजल का मसला उठाया है, लेकिन ये झारखंड के हैं और झारखंड भी दक्षिण प्रांत की तरह ही है, वहाँ पे भी क्षेत्रीय भावनाएं जो हैं, जो रीजनल फीलिंग्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं झारखंड में। इसी कारण इन्होंने अपना वो जो वाक्य दिया राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय मुद्दों का, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कौन सा और इम्पोर्टेंट है।
अच्छा राधिका जी, ये क्षेत्रीय पार्टियों की बात हो रही थी, इस कड़ी में उस चर्चा को भी शामिल कर लेते हैं। क्या जो मुख्य धारा की राजनीतिक दल होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, आप कांग्रेस का नाम ले लीजिए, क्या क्षेत्रीय पार्टियों की जो जनाधार होता है, जो उनका वोट बैंक होता है, जो उनमें आकांक्षाएं होती हैं स्थानीय मतदाता की, वो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां उसको समझ पाती हैं, उस हिसाब से काम कर पाती हैं, या इसमें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय मतदाता की भी अनदेखी हो जाती है?
कुछ हद तक अनदेखी हो जाती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल हैं वो समझते हैं अपने आप को कि वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे को ही ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आजकल कोएलिशन का ज़माना आ गया है। हालांकि बीजेपी को एक मेजॉरिटी मिली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों को शामिल किया अपने सरकार में, और जब क्षेत्रीय दल शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो सरकारी एजेंडे पर आ ही जाते हैं, चाहे जो मुख्य धारा की पार्टी है वो हैं या नहीं। और आपने जहां तक पेयजल और स्कूलों की बात की, लेफ्ट पार्टीज एक जमाने में ऐसे मुद्दे को बहुत अच्छी तरह उठाते थे, कहां गए लेफ्ट पार्टीज, कहां है उनका स्वर, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है हमें।
कम शब्दों में जवाब चाहेंगे राधिका जी कि बीजेपी के राष्ट्रवाद को ये जो विपक्ष है जो बिखरा हुआ नजर आता है, किस हद तक चुनौती दे पाएगा?
बहुत नहीं चुनौती दे पाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत अग्रेसिव है, और जिस ढंग से अपना आज आपने ही सुनाया अमित शाह जी ने कैसे जवाब दिया सैम पित्रोदा का, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सफल होंगे।
बहुत शुक्रिया राधिका रामाशीषन, आप स्टूडियो में आई, चर्चा को सार्थक बनाने में हमारी मदद की। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, हम देंगे कार्यक्रम को विराम, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ चर्चा लेकर हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।